फेडरल गवर्नमेंट क्लचेस के ऊपर यानी कि बैसाखियों के ऊपर जो चल रही है वो इसलिए है क्योंकि यहां पे और पंजाब की गवर्नमेंट में भी जो है बहुत सारी करप्शन है और खास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट पंजाब में किया गया था ये उनकी करप्शन को और भी सामने लेकर आता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया बुशरा बीबी की आज जो पिटीशन आई थी जो जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी जो मेरा घर है बनीगाला का उससे मुझे शिफ्ट करके मुझे अडियाला जेल के अंदर जो है वो डाला जाए, उसको उन्होंने रद्द किया उस पिटीशन को। आपको पता ही है कि इनका जो कन्विक्शन हुआ था तोशाखाना केस में उसके बाद इनके घर को सब जेल करार दिया था और उसमें इनको रखा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज बहुत इसका बुरा मनाया, उन्होंने कहा जी कि आपके जो लॉयर्स हैं शोएब शाहीन साहब उनको मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि पूरे का पूरा मैं केस सुनूंगा और उसके ऊपर फिर मैं अपना डिसीजन दूंगा और आज डिसीजन हो सकता था अगर शोएब शाहीन साहब आ जाते। वो आए हैं अदालत में और फिर वो वापस चले गए और फिर वो मुड़ के वापस आए ही नहीं हैं, वरना हम जो है अडियाला जेल में इनको शिफ्ट कर सकते थे जहां पे कि इनके हस्बैंड इमरान खान साहब जो हैं वो भी इम्प्रिजेंट हैं। क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा था कि मेरे बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अनआइडेंटिफाइड लोग जो हैं उनकी मैंने कुछ मूवमेंट अपने घरों में देखी है और दिस हैज क्रिएटेड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि अगर आपका लॉयर होता तो हम फिर कुछ आपको डिसीजन अच्छा दे सकते थे, बट बड़ा उन्होंने बुरा मनाया कि आप के लॉयर्स जो हैं उनको प्रेजेंट होना चाहिए आपकी हियरिंग्स के ऊपर। ईरान जो है जी उसने आज कहा है कि वो जो शिप उन्होंने पकड़ा है इसराइल का उसमें दो पाकिस्तानी भी थे, तो फॉरेन ऑफिस जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली ईरान के साथ बात कर रहा था। आज ईरान ने कहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं कि उस शिप के ऊपर जो दो पाकिस्तानी हैं उनको जो है उधर से निकाल के पाकिस्तान में भेजा जाए। ये मीटिंग जो थी फॉरेन ऑफिस की इस्लामाबाद में उन्होंने की थी ईरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान रिजा अमीरी मुकदम के साथ और उस पर उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो पाकिस्तानी हैं उनको वहां से निकाला जाए। ये जो शिप है इसके ऊपर 25 मेंबर क्रू है इसके ऊपर और इसको सीज किया था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने। मोहम्मद अदनान अजीज जो कि सीईओ हैं इस पोर्चुगल फ्लैग एमएससी एयर्स शिप के और इनके साथ एक और पाकिस्तानी थे, इनकी फैमिलीज ने फॉरेन ऑफिस से बात की थी, फिर फॉरेन ऑफिस ने जो ईरानियन एम्बेसडर है इस्लामाबाद में उनके साथ बात की थी तो उसके ऊपर फिर इन दो पाकिस्तानियों को वहां से रिलीज किया गया है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर भी मामलात वही चल रहे हैं जो कि इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ किए गए, वही चीजें चल रही हैं। बहुत इम्प्रेस हो गया इंडिया हमारे से, बिल्कुल वही 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 कर रहे हैं जी। अच्छा अब तो हद ये हो गई है कि जो अटैक्स भी हो रहे हैं वहां पे, जैसे हमारे मुल्क में हम कहते थे कि ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लग रहा है कि उस तरह के अब टेररिस्ट अटैक्स भी जो है वो अब हमसे कॉपी कर रहे हैं। मणिपुर का एरिया हमने आपको बड़ी डिटेल में मणिपुर की स्टोरियां सुनाई थी कि जी मणिपुर के अंदर जो दो वो जो ट्राइब्स हैं कुकी और मेटिस जो है वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं और वहां पे जो है औरतों का रेप किया गया, लोगों को मारा गया, बड़ी शिकायतें थी लेकिन जो है सेंटर ने कुछ नहीं किया। अब जो है लोकसभा के इलेक्शंस यहां पे एटलीस्ट मणिपुर के अंदर तीन दिन में आने वाले हैं और आज हाईवे 37 जिसको के इम्पाल जीरीबाम हाईवे भी कहा जाता है मणिपुर में, वहां पे एक जो पूरा गैंग था जिसको के अलेजली कहा जा रहा है कि ये कुकी ट्राइब के बंदे थे, इन्होंने जो यहां पे फ्यूल टैंक्स गुजर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया और काफी लोगों के ऊपर गोली वोली चलाई। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, इन्वेस्टिगेशन हमने बिठाई है लेकिन हमको लगता है कि ये अलेजली कुकीज इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये जो फोर फ्यूल टैंक्स जो थे इनके अंदर दो डीजल टैंक्स थे, एक पेट्रोल का टैंक था और एक एलपीजी गैस टैंकर जो था वो था। इसके अंदर जो एक टैंकर का जो था ड्राइवर उसको गोलियां लगी हैं काफी सारी और उसको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं लेकिन उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के बीरन सिंह उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तमाम ट्रांसपोर्टर्स डीलर्स ऑयल कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सब की और ड्राइवर्स की और उन्होंने कहा जी कि ये एक इधर देखा जाएगा कि क्या इमरजेंसी लगाई जाए कि नहीं, लेकिन इलेक्शन होने वाले हैं तीन दिन में लोकसभा के तो अब काफी लंबे अरसे तक यहां पे इमरजेंसी बिठाई गई थी चलाते रहे लेकिन अब करने की जरूरत है कि नहीं या किया जा सकता है कि नहीं उसके ऊपर गौर किया जाएगा। और जनाब ऑपोजिशन जो है वो भी जैसे कि पाकिस्तान में एक दूसरे को कह रही है तुम खराब हो, वो कहती है तुम खराब हो, वो अब जो डिबेट है वो अब हिंदुस्तान में भी क्योंकि अगेन लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। आज राहुल गांधी जी जो है बड़ा अपना एक मैसिव रोड शो जो है वो थ्रीवंबडी में चला रहे थे तमिलनाडु के अंदर और उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आरएसएस और बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यहां तक कि वो उसको चेंज भी करने के जो है वो करना चाहते हैं। कभी तो मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ओलंपिक्स कराएंगे, कभी वो कहते हैं हम लोगों को चांद पे भेजेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं आम लोगों के, जैसे कि प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड चीजें हैं, लोगों की हालत अच्छी करने की बात है, उसके ऊपर मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा जी कि कोई वेलफेयर का काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुछ अमीर घराने और बिजनेसमैन जो हैं उनकी वेलफेयर के लिए मोदी जी जो हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस जो है आम जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि जैसे आपका स्ट्रीट का गुंडा होता है ना, जो थीफ होता है, जो कि चीज के स्ट्रीट के ऊपर चोरी करता फिरता है, वैसे ही मोदी जी ने अपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स चलाए थे और इसके अंदर इन्होंने जो बेचारा छोटा लोकल बिजनेसमैन था उसको डरा धमका के जो है डराने धमकाने के टैक्टिक्स यूज करके उसको टारगेट बनाया था। मलयालम के अंदर उन्होंने कहा जी इसको कोला अधिकल कहते हैं, यानी कि लूट। तो ये जो लूट है ये फिर मोदी जी ने की अपने यूज के लिए। इसके साथ साथ जी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है हमारी दीदी ममता बनर्जी, वो भी आज जलपाइगुड़ी के अंदर जो है एड्रेस कर रही थी और उन्होंने भी बीजेपी को एक्यूज किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे और मेरी गवर्नमेंट को, टीएमसी की गवर्नमेंट यानी कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए फेक वीडियोस जो है बीजेपी चला रही है, आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो यकीन मत करो और सेंटर की गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसियों को भी यूज कर रही है अपने फायदे के लिए ताकि बंगाल के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके और ये इसके ऊपर जो है वो आप बिल्कुल ध्यान ना दें। बीजेपी जो है उन्होंने कहा जी कि उसके बड़े भाई बनके ये सेंट्रल एजेंसीज जो है काम कर रहे हैं और छोटे भाई को बहुत सहायता दे रहे हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को तुम वोट दो। इसके साथ साथ फिर बीजेपी ने भी टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि टीएमसी के गूंज जो थे, उनके गुंडे यानी कहते, उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया संक्रेल के अंदर, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहां पे, और टीएमसी ने बहरहाल जी इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी हमने ऐसे कोई अटैक्स हमारे बंदरों ने किया, तो यानी सियासत गहरम है। हाँ जी, काफी गहरम है, ठीक है जी। अच्छा जी, और जनाब एक वायरल वीडियो, एक इंतहाई जो शरीफ किस्म का बंदा है बॉलीवुड का, आमिर खान, उसके बारे में फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है जी कि आमिर खान कह रहा है कि तुम इस पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करो। अब जी आमिर खान तो इस पे भड़क गए, वो कहते हैं जी अपने 35 इयर्स फिल्म करियर के अंदर मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं किया है और मैंने जो है इस सिलसिले में अब जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनको मैंने शिकायत की है, एक एफआईआर जो है वो भी साइबर क्राइम सेल ऑफ मुंबई पुलिस जो है उसके साथ मैंने कटाया है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके साथ मैं काम करता हूं, जो अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं जिसमें मैं लोगों को कहता हूं कि भाई बाहर निकलो और वोट दो और एक्टिवली इलेक्टोरल प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करो, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहता हूं। और जनाब जो वेटरन एक्ट्रेसेस हैं जीनत अमान और मुमताज, उनके बीच में लड़ाई बहुत शिद्दत पकड़ गई है क्योंकि कुछ दिन पहले जीनत अमान ने कहा कि अपनी शादी से पहले लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए ताकि एक दूसरे का पता चले। इसके ऊपर मुमताज भड़क गई, उन्होंने कहा जीनत अमान कौन होती है इस तरह का एडवाइस देने के लिए रिलेशनशिप का, उसका तो अपना मैरिज जो था वो सही से चला नहीं था। तो जीनत अमान ने इसके ऊपर खैर बड़े डिग्निफाइड तरीके से आंसर किया, उन्होंने कहा जी मैंने आज तक कभी लोगों के ऊपर ओपिनियंस नहीं बनाए और मैं लोगों के ऊपर कमेंट भी नहीं करती, खास तौर पे जो मेरे कॉलीग्स रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं अब भी इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं दूंगी, मैंने अपना ओपिनियन पेश किया था, अगर किसी को अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसके ऊपर जो दिलीप कुमार की वाइफ है सायरा बानो साहिबा, उनसे भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी आपका लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या कहना है, उन्होंने कहा जी कि हम बड़े ओल्ड फैशन लोग हैं, हमारी जो सोच जो 40 से 50 ईयर्स ओल्ड है, तो मैं तो बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप्स को एडवोकेट नहीं कर सकती, मेरे लिए कम से कम ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल और अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि हम एक मशरकी माशरा हैं, हार्डली मशरकी अब आप रहे हैं। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा जी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जनाब प्रिया यामिनी, जिन्होंने के जवान में काम किया था शाहरुख खान के साथ, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं जो है शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कहा जी कि इससे पहले भी आपने इनको वैसे देखा था, चेन्नई एक्सप्रेस का एक गाना आया था याद है आपको 1 2 3 4, उसमें भी ये थी इनके साथ शाहरुख खान के साथ। बहरहाल जी, जवान के ऊपर बात कर रही थी ये, वो कहती है जी कि हम जब जवान के ऊपर काम कर रहे थे तो जवान के जो डायरेक्टर थे एटली उसका बर्थडे चल रहा था चेन्नई के अंदर, और वो बर्थडे बैश इतना लंबा हो गया कि सुबह 4 बजे तक चलता रहा। तो फिर हम जो लड़कियां थी हमको तो वापस बहरहाल जाना ही था होटल में, तो शाहरुख खान बाहर तक आए, हमें गाड़ियों में बिठाया, और उसके बाद हमने देखा जी कि एक पूरी गाड़ी जो है बॉडी गार्ड से भरी हुई वो हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो हमने अपनी गाड़ी रोकी और हमने उनको लड़कों को कहा कि भाई तुम वापस जाओ, तुम लोग हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम बॉडी गार्ड्स हैं, और हमको शाहरुख खान भाई साहब ने कहा है कि आपको हम होटल तक छोड़ के आए क्योंकि जो है 4 सुबह के बचे हुए हैं एंड इट इज नॉट सेफ कि लड़कियां अकेले जाएं, तो जब तक आप अपने होटल्स के अंदर नहीं जाएंगी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बड़ी जीरो ने तारीफ की। और जनाब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर लेग स्पिनर हैं और वर्ल्ड कप में भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मुश्ताक अहमद साहब, उनको एज अ स्पिन बोलिंग कोच जो है अहेड ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि समर में होने वाला है उससे पहले उनको रखा है। ये जो है वो कह रहे हैं जी कि एक प्रेपरेशन कैंप भी हमने जो है लेटर दिस मंथ करेंगे हम, जिसमें जिसके के बाद ये T20 सीरीज खेलेंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और हम जो है इनको इसलिए हायर कर रहे हैं कि ये टीम के साथ काम करें अहेड ऑफ वर्ल्ड कप जो कि होने वाला है वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर। मुश्ताक ने कहा कि जी मैं बड़ा खुश हूं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और मैं अपना पूरे का पूरा एक्सपीरियंस जो है बांग्लादेश के प्लेयर्स को दूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि बांग्लादेश की टीम जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स है, तो ये इनको थोड़ा स्किल आएगा तो ये अच्छा रहेगा। और जनाब, आज हुई बड़ी फिल्मी सी जो है वो ओलंपिक टॉर्च को जलाने की एक सेरेमनी, फ्लेम जो है फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स वो आज लिट किया गया है ओलंपिया में। आपको पता ही है कि यहीं से ओलंपिक्स जो हैं वो शुरू हुए थे ग्रीस के अंदर, और जो एक बड़ा सारा लाइट कॉल्ड्रॉन है उसको अब लाइट किया गया है समर गेम्स जो कि अब ये जुलाई के अंदर होंगी, और इसके अंदर आग लगाई गई है, एक खास किस्म का शीशा रखा गया था यहां पे पैराबोलिक मिरर जिसके के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ती है जब सूरज की तो उसमें फिर आग लगती है और उसी से फिर ये जो है अपना फ्लेम जो है वो जलाते हैं। तो ये गेम्स जो थी यहां पे शुरू हुई थी 776 बीसी में, तो उसी चीज को सामने रखते हुए, उसी इंस्पिरेशन को सामने रखते हुए आज बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको एंशियंट ग्रीक जो स्टाइल और ट्रेडिशन और वैल्यूज थे उसमें उनको ड्रेसअप किया गया था, और फिर एक जो हाई प्रीस्टेस थी वो स्टेडियम में एंटर हुई थी और उसके पीछे जो है यानी कि हेड प्रीस्टेस जिसको आप कह सकते हैं इन द टेम्पल ऑफ हेरा, और उसके पीछे फिर ये सारी आई थी और यहां पे फिर उन्होंने सेरेमोनीज की और ये जो लिट किया इसको जो है टॉर्च को, ये जो ओलंपिक टॉर्च है इसको, और अब ये पेरिस की तरफ जाएगी। और जनाब, आज जो हमारे लुलुमो हैं उन्होंने जो टीम कनाडा का ओलंपिक का जो ड्रेस है उसको अनवेल किया है फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स, और इसके अंदर पता चल रहा है कि हमारे कनेडियन ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस जो हैं वो क्या पहनेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर। ये सारे का सारा जो गियर है ये रेड के अंदर है, रेड बॉमर जैकेट्स हैं, रेड शॉर्ट्स, रेड पैंट्स, रेड शॉर्ट स्लीव शर्ट्स, और लुलुमो के जो स्नीकर्स हैं वो हैं। तो ये सारे का सारा नया ड्रेस आज उन्होंने किया है। लेकिन जनाब, नाइकी ने जो नया आउटफिट यूएस विमेन्स ओलंपिक टीम के लिए सामने इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर बेतहाशा दुनिया का जो है वो क्रिटिसिज्म आ गया, ना सिर्फ बाकी दुनिया से बल्कि खुद यूएसए के जो एथलीट्स और फैंस हैं उनके लिए भी। ये जो पिक्चर इन्होंने रिवील की थी ये मेन और विमेन्स आउटफिट्स जो हैं मैनिक्विन्स के ऊपर इन्होंने चढ़ाए हुए हैं, और लास्ट वीक ये सामने लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि जी दिस इज आवर किट लॉन्च। अब इसके अंदर जो औरत जो है, जो लेडी का जो लियोटार्ड है उसका बहुत ही हाई कट है बिकनी लाइन पे, तो जिसके के ऊपर प्रोफेशनल जो एथलीट्स हैं वो बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त ये औरतें पार्टिसिपेट हमारी एथलीट्स करती हैं किसी भी उसके अंदर, तो उसमें जो तमाशाई हैं, जो फैंस हैं, उनकी नजर उनके वल्नरेबल बॉडी पार्ट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो इतना हाई कट आपने बिकनी पे किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किट्स जो हैं उनको सर्व करना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ना कि एथलीट्स को आप नंगा दिखाने की कोशिश करें कि जो देखने वाले हैं उनका, बजाय इसके कि औरत की स्पोर्ट और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर होए उसके जिस्म के ऊपर उसकी नजरें जाएं। और ये जो एक एलीट एथलेटिक किट होती है वो इस तरह की बेहुदा नहीं होती है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि ये जो कॉस्ट्यूम है इट इज बॉर्न ऑफ पेट्रियार्कल फोर्सेस जो कि चाहती ही नहीं है कि औरतें जो हैं वो स्पोर्ट्स में नजर आए। तो बड़ा ही हार्श, वेरी वेरी हार्श क्रिटिसिज्म जो है जनाब वो आया। एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज ऑल ब्रॉट टू यू बाय ओंटारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट। दो इनकी लोकेशन है, मिसिसागा और ओकविल में। अगर आप भी इनके साथ खाना खाना चाहते हैं तो आप इनके साथ ऑर्डर डाल सकते हैं, मिसिसागा में 9052323663 और ओकविल में 9052262294। एंड जनाब मलिक लॉ ऑफिस, कोई भी आपके केसेस हैं आप मोहम्मद अतीक मलिक साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर है 9052914455। ऐसी साड़ियां जी खरमा माजद भाई, खुश हो तुसी?
बस
अच्छा मतलब है खुद तो तुसी सोच हो के आगे हो ना माजद भाई, तो मुझे क्या है वो बस तुसी हमने खरबे दी है।
चलो थैंक यू सो मच, अभी आपकी जा नहीं रही है, आप तो
कोई नहीं, मैं तो आपके साथ बैठी
गोंद लगा के बैठी
ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिपकी हुई हूँ आज मैं फिर आपके साथ ही। हालांकि आपने पूरा ये जो है ना सोचा हुआ कि आपने मुझे खुश नहीं करना, लेकिन फिर भी जो है मैं देखे मेरा आपके साथ कितना प्यार है और मेरी कितनी सिंसियरिटी है आपके साथ, लॉयल्टी कितनी है। मैं बैठी
मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, दूसरा आप कंप्लीट कीजिएगा इसको।
अच्छा ठीक है,
बर्दाश्त करो या
नसो इधर। मजद भाई अच्छा देखें, दिल दुखाने की बात ना करें, दिल क्या था वो गाना था, दिल दुखाने की बात करते हो हैं, आशियाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात, तो मजद भाई दिल दुखाने की
आशियाना मीन्स ये
ड्रग्स, वो वाला ड्रग्स जिसमें मैं और आप बैठ के प्रोग्राम करेंगे कुछ
अच्छे घर।
अच्छा अच्छा आशियाना घर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं भाई, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
आशियाना जो अब उन्होंने कहा कि ऐसी दिल दुखाने की बात ना किया करो, आशियाने की बात ना किया करो, मीन्स के अब मॉर्गेजेस तो मुश्किल है।
हाँ तो दरख्त पे बैठ के आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो जी इससे पहले कि हमें कोई कॉल करे, मजे से ये नाज़िया हसन का प्यारा सा कोई गाना तो सुनाओ जिसको चोरी कर लिया था।
पहले टॉप ऑफ द आवर हो जाए।
हाँ वो टॉप ऑफ द आवर लगाएं, फिर लगाएं वो डिस्को दीवानी जिसको चोरी कर लिया था हमारी हमसायों ने।
अच्छा
हाँ,
थोड़ी देर बात करते हैं हम, और
तो चोरी वाला गाना सुनाएंगे या ओरिजिनल सुनाएंगे?
आइए सुनिए नाज़िया हसन की आवाज में।
नहीं आपने ओरिजिनल सुनाना है कि चोरी वाला सुनाना है आपने?
नहीं नहीं हमने
ओरिजिनल सुनाना है।
नहीं चोरी वाला,
चोरी वाला, चलो
तो कुछ प्रोसेस का पैगाम, विल बी राइट बैक, डोंट यू गो अवे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने दी निम्रता सहित बेनती कीती जांदी है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक वर्ल्ड कैनेडा विच ट्रकिंग इंडस्ट्री का सब तो वड्डा शो इंटरनेशनल सेंटर विखे 18-19 अप्रैल नु हो रहा है, जिथे ट्रकिंग इंडस्ट्री नाल संबंधित बहुत सारे वेंडर्स मौजूद होंगे। मिलो क्विक ट्रक लूप दी पूरी टीम नु बूथ नंबर 1410 विच, जिथे ऑयल ते फिल्टर कंपनियां दे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तिन्ने दिन जितो फ्री ऑयल चेंज ते कई होर इनाम। री एंट्री पास ले truckworld.ca ते प्रोमो कोड क्विक दी वरतों करो। वधेरे जानकारी लई कॉल करो क्विक ट्रक लूप 519-622-0660।
Happy 50th birthday, Brampton. As Khushi de Mauke te, City of Brampton, 70-70 to vad umar wale shehriyan nu special gift offer kar rahe hai. Free annual recreation membership. Jehdi tuhanu fitness de saariya programa te activities vich shareek hon da free mauka devegi. Brampton Recreation Center visit karo te apni free membership claim karo. Eh offer pehli June to shuru ho rahi hai. Full jankari le brampton.ca/membership.
Valia Traffic Legal Services set in up RS Valia.
Careless driving.
Speeding ya phir accident.
Fail to remain stop at the scene.
Red lights ya phir seat belts.
Permits drive without insurance.
Racing, student driving ya phir caught while using phone.
Speeding.
RS Valia. Aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112.
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस पैराडोंटिक्स ऑर्थोडोंटिक्स डेंटल इम्प्लांट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं कोई मसला नहीं स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही शिनवारी गोट कड़ाही निहारी हलीम पाए बिरयानी सीख कबाब चिकन टिक्का शवरमा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन वही देसी अंदाज और वही देसी जायका केटरिंग स्पेशल 8 आइटम्स फॉर जस्ट 9.99 मिनिमम 30 पीपल्स 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3 ऑर्डर नाउ कॉल 416-526-6800
416-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काख दा उस जिंदगी मुश्किल कर देता है बाकी बातें एक तरफ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहती हूँ अगला सेगमेंट अभी आपने न्यूज सुनी डिटेल में और अगेन ये वाला सेगमेंट हमारा एंटरटेनमेंट का सेगमेंट होगा जिसको कोर्स हमारे स्पॉन्सर्स भी आप तक लेके जाने में हमारे मददगार और मुआविन होंगे रूबी ज्वेलर्स का जिक्र करना चाहती हूँ रूबी ज्वेलर्स अगर आपने जेवरात लेने हैं और जड़ाऊ जेवरात खासतौर पर जो हम पाकिस्तान में बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो नॉर्मली सिर्फ सोने के जेवरात नहीं पहनते जड़ाऊ जेवरात को प्रेफरेंस दी जाती है और आप लिबर्टी में चले जाएं या किसी भी जगह पे सुहा बाजार में अगर आप चले जाएं तो इन जेवरात की मांग निस्बतन ज्यादा है रूबी ज्वेलर्स पे अगर आपने स्ट्रिंग्स लेनी है स्टोन स्ट्रिंग्स लेनी है तो आपको वो मिलती हैं जेवरात में अच्छा अकरम भाई से मुलाकात कीजिएगा तो आई होप सो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड डील एक गीत पे लेके जाने से पहले बहुत से ममालिक की फोर्सेस जो हैं वो दूसरे मुल्कों में ऑपरेशन करती हैं रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने जो इसराइल ने जो इराक में दमिश्क में हमला किया था अम्बेसी पे हमला किया था पाकिस्तान में बहुत से लोग पकड़े भी गए हिंदुस्तान में भी बेशुमार लोग जो जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए और अपनी अपनी सजाओं को भुगत रहे हैं एक शख्स था अगर आप याद करें सरबजीत सिंह इसका नाम था उसकी बहन ने बाकायदा लाहौर पहुंची भी थी पाकिस्तान को मिला भी था जासूसी के इल्जाम में ही वो ऑल्सो पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में थे तो बहरहाल ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मफाहमत हो जाएगी और किसी तरह से सरबजीत सिंह उनकी बहन ने रहमदिली की अपील भी की थी कि उनको छोड़ दिया जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली जेल के अंदर से ही दो शख्स थे कैदी थे वो भी सरबजीत के साथ ही कैदी थे अल्टीमेटली जनाब उन्होंने कत्ल में उसका मर्डर कर दिया था ये पुरानी बात है मगर वो कहते हैं ना कि दुश्मनी इंसान कभी भी भूलता नहीं और खास तौर पे अपने खास कारकुनान के लिए अगर कुछ किया जाए तो मुल्क उनके पीछे खड़े होते हैं अभी रिसेंटली लाहौर में ना इस्लामपुरा के ये इस लास्ट संडे की बात है 15 تاریخ تھی، 15 اپریل ایگزیکٹلی، سنڈے، آج منڈے اور آج ٹیوزڈے ہو گیا. تو اسلام پورا میں نا چھوٹے گھر ہیں اور تین تین چار چار لیولز کے یہ گھر ہیں. یہ لڑکا جو تھا نا عامر سرفراز، یہ جیل میں تھا جب سربجیت جیل میں تھے، کوٹ لکھپت جیل میں تھے. ایک عامر سرفراز تھا، ایک ان کو اور ساتھی تھا جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا جیل میں ہی سربجیت سنگھ کو. خیال تھا کہ شاید ان کو رہائی مل جائے، ان کی بہن بہت ایکٹیو تھی اس معاملے میں، مگر پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا. یہ جو عامر سرفراز تھے ان پہ بھی مقدمہ چلا. پھر ان کو انہوں نے کہا کہ عدم ثبوت کی بنا پہ ان دونوں کو بری کر دیا گیا تھا. بہرحال ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو وہ تو جو ہوا سو ہوا، مگر اب اتوار کو جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد ایکچولی یہ سوال پوچھا گیا محسن نقوی صاحب سے، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ بالکل جی، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور یقیناً ہندوستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے، تھینک یو ویری مچ جناب محسن نقوی صاحب، آپ نے اس کو انفارم کیا. تو بہرحال اب یہ 2013 میں سربجیت سنگھ کا قتل ہوا تھا، جو سربجیت سنگھ کا کوٹ لکھپت جیل میں یہ قتل ہوا تھا. اس کے بعد یہ دو لوگ موجود تھے. سربجیت سنگھ کو 1990 میں اریسٹ کیا گیا تھا ایک بم دھماکوں کے سلسلے میں، اور یہی خیال تھا کہ انہوں نے مطلب پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائی میں ملوث تھے. بہرحال یہ جو دو تھے، عامر سرفراز عرف تانبا اس کا نام تھا، یہ اور ان کا ایک اور ساتھی کوٹ لکھپت جیل میں تھے، جنہوں نے اس پہ سربجیت پہ بہت تشدد کیا تھا. سربجیت کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ معاملہ چل رہا تھا، مگر اتوار کو جو واقعہ ہوا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسٹر تانبا جو تھے تھرڈ فلور پہ رہتے تھے، سیکنڈ فلور پہ گراؤنڈ فلور پہ ان کا بھائی رہتا تھا. ان کے تھرڈ فلور کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دو لوگ موٹر سائیکل پہ آئے اور انہوں نے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد شوٹ کیا، اور ڈائریکٹ شوٹ کیا عامر عرف تانبا کے اوپر شوٹ کیا اور ان کو مار دیا. اب یہاں پر دو چیزیں، ایک تو ہمارے جو جناب محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے وزیر داخلہ ہیں ہمارے، ان سے پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ عامر عرف تانبا جو ہے اس کے مرڈر کے پیچھے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے کہا کہ اس سے پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ہندوستان کی ایجنسیز ملوث ہوتی ہیں. بہرحال ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ابتدائی شہادت ابھی کوئی خاص نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور برطانیہ کے اخبار اور دنیا جہان کے اخباروں میں یہ کہا گیا کہ انڈیا غیر ملکی سرزمین میں رہنے والے ریاست مخالف جو عناصر ہوتے ہیں ان کی ایک ختم کرنے کی وسیع حکمت عملی پر پیرا ہے. بہرحال پچھلے دنوں میں کئی اور واقعات بھی ہوئے ہیں. دس از آل. عامر سرفراز تانبا تھے کون؟ یہ اس وقت مقامی میڈیا میں گردش کرنے لگا تھا جب یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ لاہور کی جیل میں انڈین شہری، ان کا نام تب زیادہ سرکولیٹ ہوا تھا، اور انہوں نے سربجیت کو 1990 میں گرفتار کیا تھا جب لاہور اور دیگر علاقوں میں بم دھماکے کرنے کے بعد واہگہ بارڈر کے راستے جو سربجیت تھے ہی واز گوئنگ بیک ٹو انڈیا. بہرحال سزا کو جاری رکھا، سپریم کورٹ میں یہ کیس کیا، سپریم کورٹ نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا. سربجیت کے جو ورثہ، خاص طور پہ ان کی جو بہن تھی، شی واز ویری ایکٹیو، پرویز مشرف کو بھی انہوں نے درخواست دی تھی، اور 2008 میں ان کو پھانسی دی جانا تھی. 3 مئی کو پاکستان نے پھانسی پر عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا تھا. تو بہرحال الٹیمیٹلی جیل کے بیچ میں ہی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ دو لوگ ہیں جو اس کے اوپر کرتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہرحال یہ تو تھے الٹیمیٹلی جناب عامر تانبا صاحب جو ہیں، آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. بہرحال ایک خبر تھی جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی
ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف جی، پہلے ایک کالر کو لے لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے.
آپ اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہوئیے گا، ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں گے، آپ نے جو بات کرنی ہے آپ ضرور بات کیجئے گا. السلام علیکم. اچھا بائی دی وے میں بتانا چاہتی ہوں، جو سربجیت عامر عرف تانبا ہیں ان کے اوپر 3 گولیاں چلائیں، سروائیو کر گئے ہیں، اب لیٹس سی کہ واٹ ہی سیز. زخمی ہوئے ہیں، اور ان پر الزام یہی تھا کہ ظاہر جیل میں انہوں نے دونوں لوگوں نے تشدد کیا تھا، مگر پھر کورٹ سے بری ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وافر شواہد اس کے بارے میں موجود نہیں ہیں. جی السلام علیکم. جی हेलो भाई जान, वो तो लिख पर दिक्कत पड़त कर रहे हैं।
हेलो।
अच्छा, आपका हेलो ज्यादा उनको पसंद आएगा।
नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। तो आप दोबारा फोन कर लें, 4166201778 हमारा फोन नंबर है। वो है हमारे साथ, मगर वो मेरा ख्याल है उन्होंने अपना फोन उन्हें म्यूट किया हुआ है।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो साथ ही हैं। एनीवेज, एक गीत की तरफ आपको लेकर के चलती हूँ। और स्टूडियो का नंबर 4166201778, आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
आपने फोन म्यूट किया हुआ था।
नहीं नहीं, ये दूसरे भाई हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी
ये दूसरे भाई, तीसरा अभी रहते हैं। एक तो ये है कि आप जब माजरत के साथ जब तस्करा कर रही थी ना, तो लखनऊ वाले बिल्कुल आगे थे याद मुझे।
वो कैसे
सर, अजीत कुमार ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, यानी हर चीज जमा में को। तो एक ये गए ना लखनऊ वाले किसी घर में नमरूद को वो मुबारकबाद देने, तो उन्होंने कहा वो किधर है भाई बच्चा, उसके कान में अजान दे दी है, यहाँ कहाँ ले है। तो उनकी नानी ने कहा वो कमरे में इस्तराहत फरमा रहे हैं। तो एक्चुअली बात ये थी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि सरबजीत सिंह वॉज डेफिनेटली, यू कैन टेल क्लियरली टू द पीपल दैट ही वॉज अ रॉ एजेंट एंड ही वॉज स्पाइंग इन पाकिस्तान। वो जो उनकी बहन ने सारा ड्रामा किया था कि जो जी वो तो बावला है, उसको बावला डिक्लेयर कर दिया, पागल डिक्लेयर कर दिया, पागलपन में सरहद क्रॉस कर दिया, दैट वॉज नॉट द ट्रूथ, ही वॉज रियली इन्वॉल्व। और वो जो मुशर्रफ साहब ने उनको होल्ड कर किए रखा। दूसरी बात यह है कि ये इसको मरवाया भी, खैर है लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई जाती लड़ाई झगड़ा नहीं था। इन्होंने कहा है फांसी दी तो कोई और ड्रामा हो जाएगा, बेहतर है कि
आपस में लड़वा के मरवा दो।
जी हाँ। और ये जो है, ये तांबा साहब फौत हो चुके हैं, उनको गोलियां लगी, ही इज ऑल्सो टारगेटेड बाय द एजेंट्स।
सही,
दैट्स अ रियल स्टोरी। तो
देखिए जी, कुलभूषण यादव जो है, पाकिस्तान के पास कभी भी इनफ एविडेंस नहीं रही। हालांकि कुलभूषण यादव का जो मामला है, अल्टीमेटली इंडिया उसमें पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी इंटरवेंशन से जेल में उसे साइन कराया गया। हालांकि साइन कोई करवा नहीं सकता था। और मैं जाहिर है लोगों की दिलदारी के लिए उस गवर्नमेंट का जिक्र नहीं करना चाहती कि किस तरह से इंडिया से लोग पहुंचे और वो जेल में साइन, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है ये, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो फिर मामला गया, एंड दैट पिटीशन वॉज साइंड बाय कुलभूषण यादव। उसमें हमारे अपनों ने रोल प्ले किया।
एक बात ये है कि ये जैसे ना एविडेंस नहीं है। एविडेंस किस चीज की होती है?
एग्जैक्टली
एविडेंस क्या, वो ताजमहल होटल की है एविडेंस ना? कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस तो बनाई जाती है, मैनिपुलेट की जाती है, डिजाइन की जाती है। तो ये जो कहते ना आप सबूत लाएं, सबूत भाई हम लगे हम वहां थोड़ी खड़े हुए थे, सबूत लाएं। आपके पास जो एनवायरमेंट है, आपके जो उसकी जो सिचुएशन है, वो सबूत फराहम कर रही होती है। तो ये जो है कि जी सबूत लाके जी ये उसमें इन्वॉल्व था, भाई आप सबूत लाके पाकिस्तान के कितने एजेंट्स वहां पे इन्वॉल्व हैं, किसी ने इन्होंने कोई सबूत लाए कोई या उसके वीडियो को ऐसी जाए बनाई है। ये सारे खेल होते हैं, सारे पॉलिटिकली वो होते हैं, स्टंट्स होते हैं।
तो
जी हाँ, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल आप अपना राय देते हैं, बस वही रिस्पेक्टफुली देते चले जाए। दिस इज योर प्लेटफॉर्म। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
जी वालेकुम सलाम।
अपना नाम बता दीजिए और बताइए आपकी रिजर्वेशन क्या है।
नहीं नहीं, पता नहीं रिजर्वेशन की, नाम मेरा फेयर है। और जो सरबजीत तू जेल च मारिया ने ना, उस अगले वीक दे इंडिया की जेल च एक बंदे उन्हें मार छड़ाया, वड्डी वड्डी गाड़ी है, नाम नहीं उसका याद है। और गेमा करते ने।
सही सही, बहुत शुक्रिया ममालिक के दरमियान ये चलता ही रहता है। آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے اپنا بالکل ہر انسان اپنی رائے دے سکتا ہے کیونکہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. 416-6201778 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. یونیک سائنس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے گھر کے باہر اپنا ہوم سائن ود نیم اینڈ نمبر آف دا اسٹریٹ, نمبر آف دا ہوم اینڈ نیم آف دا اسٹریٹ کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں لٹ سائن, تو آپ یونیک سائن سے رابطہ کر لیجیے گا. سر بکرم جیت یہاں پہ ہوتے ہیں اینڈ دس از آل وائی فائی کنٹرولڈ. آٹومیٹیکلی لائٹس آن ہوتی ہیں, آٹومیٹیکلی 4-5 بجے آپ بند کر دیا کریں, مگر اٹ ول بی گڈ فار یور ہوم. ایک تو گھر لٹ اپ ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے آپ کا ڈرائیو وے. نمبر ٹو, اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر آپ کے وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کا گھر ڈھونڈنے میں بھی آسانی مل جائے کہ جی یہ گھر اگر 46 ہے تو ساتھ والا ادھر والا 48 ہوگا ادھر والا. دیٹس اے گڈ تھنگ, بٹ دا موسٹ از اٹ ایڈز اے لاٹ. آپ کی اپنے گھر کی جو آؤٹ لک ہے اس میں بڑا ایڈ کرتا ہے. اٹس آل آٹومیٹڈ. 6475274482. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
اپنا نام بتائیے.
جی میں مسز جمیل بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کہنا ہے آصف آبادی کہ آپ جیسے حقیقت آتا ہے اور دوسرے گیتی آرا کے پروگرام آتے ہیں, اگر آپ ایک وہ لسٹ دیں کہ اس دن یہ آتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا.
آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت پیاری آپ نے بات کہی. اور میں نے اپنی ٹیم کو بڑی دفعہ یہ لفظ کہا ہے, ایک چھوٹی سی چیز آپ ایک سکرین سلائیڈ بنا دی جائے. آپ سے بات کرنے کے فوراً بعد میرا خیال ہے میں گیت کے دوران ہی جا کے ریکویسٹ کروں گی کہ آئی وانٹ ٹو سی دس ڈن ٹل ٹمارو.
میں نے آپ کو میسج بھی کیا ہوا ہے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ. میرے ہسبینڈ بہت شوق تھے اور میں 2 بجے سے بیٹھ کے آپ کا جو پروگرام دیکھتے ہیں تو بس اثر کی نماز بھی جلدی جلدی پڑھ جائے اور فوراً وہ کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں دیکھنے آپ کا پروگرام.
آپ کا بہت شکریہ, مگر میں آج ہی اس کی امپلیمنٹیشن اور کہتی ہوں ان سے کہ بھئی یہ کل تک ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے. تھینک یو.
کس دن آتا ہے پروگرام اور کتنے بجے آتا ہے؟ بہت اچھا ہو جائے.
میں ڈیفینیٹلی
شکریہ. آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, بہت نالج.
اپنا نام بتا دیجیے.
میں غزالہ جمیل.
غزالہ جمیل, غزالہ بہت شکریہ آپ کی کال کا. سو نائس ٹو ٹاک ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. غزالہ جی سے میں نے بات آپ کی کرائی. ابھی آپ نے وہ آرمی کے جنرل ایمن کے بارے میں سنا ہے, ان کے ریزگنیشن کے بارے میں کہ ہی واز سپوز ٹو ریزائن آن 4th بٹ ہی ریزائن ارلیئر 2 اپریل کو انہوں نے ریزائن کیا. میری ابھی ایک جنرل صاحب سے بات بھی ہوئی ہے اس کے بارے میں. آرمی میں کچھ لوگ ہیں جو اب لائک مائنڈیڈ نہیں رہے, جس کو, اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز کو ڈی فیم کرنے کا سلسلہ زیادہ شروع ہو جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں حقائق ضرور ہوا کرتے ہیں. بہت سے لوگ آرمی کے جو محسوس کر رہے ہیں, بہت سے ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آواز نکال نہیں سکتے, مگر حاضر سروس بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو کہ اس وقت کی جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے آرمی میں ان کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے اس میں کچھ لوگ ایکٹنگ ہیں اور کچھ لوگ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں رول پلے کر رہے ہیں. ابھی بلکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے آرمی چیف کے زیر صدارت ہونے والی 264ویں کور کمانڈر کانفرنس میں ایک اعلامیہ جاری کیا. 264th کانفرنس تھی یہ, اور اس میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کو شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا, اور انہوں نے بشام میں جو چائنا کے امپلائیز تھے جن کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس حملے کی مذمت بھی کی گئی ہے, اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا بھی اس میں ذکر کیا. مگر انہوں نے ایک چیز کو خاص طور پہ ان ساری باتوں کا کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے بارے میں یا پاکستان کی فوج کے بارے میں جو الزامات کی ایک مہم جاری ہے, اس میں کچھ ایک تو چیزوں کو جان بوجھ کے, اور میں بتاتی ہوں یہ لوگ جو دوز ہو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ فیم آن دیز تھنگز, یو کین نیور اسٹاپ دیم, نیور اسٹاپ دیم. اب تو بس یہ گھر بگڑنا ہے اور بگڑتے چلے جانا ہے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان کا کچھ بھی نہیں جانا, میرا بھی کچھ نہیں جانا, مگر الٹیمیٹلی جو ملک کے ساتھ ہوگا. مگر آئی وش کہ آرمی کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس کو بھانپ سکے. تو میری ابھی ایک جنرل صاحب ہی ہیں, ریٹائرڈ جنرل ہیں, ان سے بھی جو بات ہوئی, اینڈ آف کورس وہ ہی واز اباؤٹ ٹو آلموسٹ ہی کرائڈ And he said ki yes, there is a rift between the army officers, senior officers ke darmiyan ek rift hai. Halanki ISPR ne iske bare mein kaha hai ki Pak fauj ke khilaf ilzamat par mubni muhim ko mustarid kar diya hai aur is ilamiya jo ki baqaida 264th core conference mein ye jari kiya gaya hai usme kaha gaya hai ki fauj aur awam ke darmiyan daraad ki koshishon ko nakam banayenge. But now this is not going to end up anywhere close aur isme har انسان اپنا حصہ ڈال رہا ہے ہر انسان اپنا حصہ ڈال رہا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو لڑانے والے ہوتے ہیں نا وہ مزے لیتے ہیں صرف مزے لیتے ہیں اور دیٹس آل واٹ اٹ از نتھنگ ادر دین دیٹ نقصان ہوگا تو پاکستان کا ہوگا اس میں وہ لوگ جو پاکستان میں پیسے کی غرض سے یہ کام کر رہے ہیں ان کی بھی غلطی ہے اور وہ لوگ جو اس چیز کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں بیکاز ان میں سے کسی کا کوئی کچھ نہیں جانا بہرحال انہوں نے کہا کہ آپریشنل تیاریوں میں تربیت اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے اوپر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا مشرق وسطی میں جو کشیدگی ہے اس کے بارے میں اظہار تشویش پیش کیا گیا تو دیٹس آل واٹ اٹ از اینی ویز ایک گیت کی طرف آپ کو لے کر کے چلتی ہوں آپ اس گیت کو سنیے گا اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778 ہمارا جو گیت ہے میری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں جو ہم آپ کو گیت سنائیں ابھی ایک گیت کی فرمائش آئی تھی آئے تو آپ کی فرمائش آئی تھی میرے فون کے اوپر آئی تھی آئی جسٹ پلیڈ اس کے بعد مجھے چار میسیجز ملے ان چاروں میسج میں تو یہ آپ نے کس زبان میں گیت لگا لیا دیکھیے صاحب پاکستان کے تمام صوبے ہیں کہیں پہ سندھی بولی جاتی ہے کہیں پشتو بولی جاتی ہے پنجابی بھی بولی جاتی ہے سرائیکی بھی میری اپنی زبان ہے پوٹواری بھی میری اپنی زبان ہے تو ظاہر ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں کے لوگ جب یہاں پہ موجود ہیں اردو کے گیت تو ہم سب سنتے ہی ہیں مگر اگر علاقائی گیتوں کے بارے میں ہو اور یہ گیت بڑا خوبصورت آیا ہے اگر آپ اس گیت کو سنیں تو اس علاقے کے لوگوں کی جو کلر تھیم ہے اس کو اس میں پیش کیا گیا ہے جن کلرز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں یا موسٹلی ان کلرز کے ڈریس اور گھاگراز پہنتے ہیں اس ان ڈریس کو اور اس طرح
آنکھوں کو اچھا لگتا ہے
کشیدہ کاری کو
اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کو بڑا بہت
اس کڑھائی کو جو وہاں کی ہے اس کو اس گیت نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے اینی ویز اس وقت گیت کیونکہ گیت میرے ہاتھ
میں نازیہ حسن اینڈ زہیب کی آواز میں ڈسکو دیوانے بعد میں اس کو چوری کر لیا گیا تھا مگر یہ اوریجنل ہے
صحیح سر
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਬੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਫੋਨ 416-264-3111
ममा लंच रेडी है बहुत भूख लगी है
या मॉम मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया
बाय द वे क्या बनाया है
जो टीवी देखते हुए खाएगा उसके लिए करेले और जो मोबाइल हाथ में लेकर खाएगा उसके लिए टिंडे और जो तमीज से सबके साथ मिलकर खाएगा उसके लिए बिरयानी
यही है मीनार बासमती राइस का मजा लंबा खिलता खुशबूदार दाना पर जब भी खाना मिलकर खाना मीनार हर दाने में प्यार
ITN फूड कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके और हमारे किचन की हर जरूरत एथनिक स्टोर्स के अलावा लॉबलॉज वॉलमार्ट सोबीज फ्रेशको फूड बेसिक्स एंड मेट्रो आपको ITN की प्रोडक्ट्स पिक कीजिएगा देसी मसाला जात के लिए अशोक का देसी शान की प्रोडक्ट्स ITN मीनार की प्रोडक्ट्स लीजिएगा पांच दरिया डायमंड बेहतरीन क्लासिक राइस ITN आपका अपना ब्रांड आपके किचन की हर जरूरत पूरी करते हैं
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है हेमोपार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157 जी हां 416-570-0157
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिगड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरिसन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
अगर आप पाकिस्तानी नायकॉप या पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आपको लगवाना है वीजा एक ही नाम याद रखें अल हबीब ट्रेवल उमरा पैकेज हो या उमरा के दौरान मक्का और मदीना में होटल की बुकिंग्स अल हबीब ट्रेवल मार्केट और ऑनलाइन बुकिंग से बेहतर रेट फराहम करते हैं गारंटी के साथ आज ही कॉल कीजिए अल हबीब ट्रेवल के शहजाद हबीब को 416-710-1549 ओपन 7 डेज अ वीक अल हबीब ट्रेवल 2860 डेनिसन स्ट्रीट मार्कम
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872
जी हाँ सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों
जी साहब प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामद एक गीत की फरमाइश आई है पर मगर बड़ी अजीबोगरीब फरमाइश आई है उन्होंने कहा है कि सॉन्ग इज सुपर मगर डोंट वॉच द वीडियो
ये तो अरफा जी 1981 की मूवीज है अगर 1981 की मूवीज का अगर वीडियो वॉच नहीं करना है तो फिर अभी 2024 की कैसे वॉच करेंगे उस जमाने में तो कम से कम कुछ तो ख्याल था और स्पेशली राजेश खन्ना पे फिल्माया गया ये गीत तो ये तो फिर भी तहजीब के दायरे में
نہیں نہیں مگر ہم نہیں نا پلے کرتے وائی وڈ بیکاز جس وقت فیملیز جب دیکھ رہی ہوتی ہیں اور گھروں کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا کہ میری ٹیبل کے اوپر جو چیز آئی کین اونلی سرو واٹ از آن مائی ٹیبل اور واٹ وی ایٹ اور واٹ وی ڈرنک تو دیٹس آل واٹ اٹ از. فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے. دیکھیے صاحب نکال کے لے جاتے ہیں. کل بھی میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ جو لال مسجد کا واقعہ تھا اس کے جنرل صاحب حیات ہیں, ان کے اوپر جو چارجز لگے ہوئے ہیں مگر ظاہر ہے ان کو کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہونے دیا جائے گا. دیٹس ہاؤ دس ڈپارٹمنٹ پروٹیکٹ اٹس آفیسرز اور خاص طور پہ جو انہوں نے لائن آف ڈیوٹی پہ کام کیا ہو. یہ فیض آباد میں 2017 میں ٹی ایل پی کے دھرنے اور اس کے دوران پیش آنے والے واقعہ پر انکوائری کمیشن نے رپورٹ تیار کر کے حکومت کو دی ہے. رپورٹ میں آئی ایس اے کے سابق سربراہ فیض حمید سمیت فوجی افسران کو ایک دم سے کلین چٹ دے دی گئی. اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی تھی, البتہ اس گورنمنٹ کو ریسپانسبل قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیے شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس وقت, لیٹس سی واٹ ہیپنز. ظاہر ہے ان کے پاس وزارت اعلی تھی اور پنجاب حکومت پر انہوں نے اس کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ پنجاب حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو یہ دھرنا دینے کی اجازت ہی کیوں دی تھی. بہرحال یہ کمیشن رپورٹ میں ملک کی طاقتور خفیہ ایجنسی کے جو فیض حمید صاحب ہیں, از اے ویری اسٹرانگ مین. فیض حمید از اے ویری اسٹرانگ مین, ہی ڈڈ سرٹن مسٹیک. میں ایک مسٹیک ان کی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دا پولیٹیکل تھنگ. ایک بہت بڑی کہ جب ایجنسیز کام کرتی ہیں تو ایجنسیز پس پردہ کام کرتی ہیں. یہ جب افغانستان گئے تھے اور انہوں نے ایک صبح میں مارننگ کا کپ آف ٹی کے ساتھ جو اپنی تصویر شیئر کی تھی, دیٹ واز اے رانگ میسج, ایبسولیوٹ رانگ میسج. حالانکہ وہ اپنی اسٹرینتھ دکھانا چاہتے تھے بٹ اٹ واز اے رانگ میسج. مگر انکوائری کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دھرنا ختم ہونے پر مظاہرین نے پیسے تقسیم کرتے ہوئے ویڈیوز میں دکھائی دینے والے ڈی جی رینجرز جو ہیں میجر جنرل نوید اظہر حیات کو الزامات میں کلین چٹ دے دیا. کمال ہے بھائی, آپ جس سے چاہیں جو فیصلہ کرا لیں. اب وہ لوگ کیا کہیں گے جو ان چھ ججز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ زبردستی فیصلہ لیا جاتا ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ لوگوں کے پاس ویڈیو ہے اور ویڈیو سب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا ہے. بہرحال رپورٹ میں قرار دیا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت میٹنگ میں دی گئی ہدایات پر ہی عمل کیا تھا. حالانکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ بالکل جی فیض حمید صاحب کو کورٹ میں آنا چاہیے, عدالت میں آنا چاہیے, کیا ہم پہ پریشرز تھے. تو فیض آباد دھرنا کیس میں حکومتی کمیٹی مسترد, جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا اتنے مٹی پاؤ. بہرحال کس کس چیز پہ مٹی پائیں اور چلتے چلے جائیں. ٹیکسز کے حوالے سے آپ کو بتائیے, آج کینیڈا کا بجٹ جو اناؤنس ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہاؤسنگ افورڈیبلٹی اینڈ ڈیفیسٹ فار دا فورسیبل فیوچرز ہائی لائٹس فرام دی فیڈرل بجٹ. کوشش کریں گے کہ گھروں کے اوپر گھروں کی سیل پہ اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی گھر ہیں جو لینا چاہتے ہیں اس پہ اس بجٹ کا کیا اثر ہوگا.
بہت زیادہ اثر ہوگا ارفا جی, اسپیشلی جیسے میں نے آپ سے کہا پہلے بھی کہ جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں وہ تو انکم ٹیکس کو بتاتے نہیں ہیں اور وہ گھر بھی خریدنا چاہتے ہیں 3-4 ملین کے, تو ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ دے گو ڈائریکٹلی ناٹ ٹو سی آر اے بٹ اندر ایجنسی جس کے تھرو
سی آر اے کے تھرو. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ مارگیج والے جو تھے, دیر آر فیو تھنگز وچ آئی ڈونٹ ڈیل ود دا مارگیجز, نو آئی ڈونٹ, نہ میرے پاس کوئی مارگیجز کا لائسنس ہے. مگر ظاہر ہے سسٹم میں جو لوپ ہولز ہوتے ہیں اس میں بینک کو پتا ہوتا ہے, لائر کے ساتھ آئی ڈونٹ نو, مگر لیٹرز ان کی پریپریشن ہو جایا کرتی تھی, باقاعدہ کیس ہسٹری ڈیولپ کر دی جاتی تھی. بہرحال اب بھی کوئی آپ فکر نہیں کریں, اب بھی کوئی نہ کوئی تگڑم لڑاری جائے گی. سسٹم میں ہمیشہ لوپ ہولز ہوا کرتے ہوتے ہیں اور جتنا کوئی بڑا انسان ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹنٹ بھی اتنا سپرب ہوا کرتا ہے جو اس کے ہر ایکشن اس کو سیو کر کے لے جاتا ہے, اس کا وکیل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے بیکاز دے ہیو منی ٹو پے. تو اب جو یہ نئے سسٹم کے بیچ میں جو یہ ایک چیز مجھے نظر آتی ہے دیٹ از لٹل کہ آپ को अब बैंक डायरेक्टली जो आपके जो पे स्टब्स हैं उसके लिए बैंक डायरेक्टली सीआरएस से वो पे स्टब्स
फाइलिंग जो आपने की है
जो फाइलिंग की है पे स्टब्स या जो आपने फाइलिंग की है पहले ये था कि उसमें आई डोंट नो अभी भी क्या हो जाएगा दिस इज व्हाट द सिस्टम इज एनीवेज अब वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेगा बैंक टू द सीआरए
जो इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर्स के लिए भी अगर आपका अपना घर है अगर इसके अलावा भी आपने अगर कोई प्रॉपर्टीज खरीदनी थी और फ्लिप करना चाहा तो जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया
35% था पहले तो
हाँ अब इसको बढ़ा दिया गया
अच्छा गेन टैक्स को भी बढ़ा दिया गया चलिए साहब ठीक है सही है जो सिस्टम में जो चीजें हैं बहरहाल हमारा काम आपको इन्फॉर्म करना था
अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिंग एन एक्स्ट्रा स्नैक क्या समझेंगी आप
मतलब अक्सर रोटी लेके आओ हो सकता है साथ तुम्हारे कोई बैठा उसको भी खिलाना पड़े
अगर आप ट्रैवल कर रही हैं वेस्ट जेट एयर कनाडा डेल्टा एयर इंडिया एंड लिस्ट ऑफ अदर तो हमारी जो गेट गोरमेल है गेट गोरमे जो सारा फूड सप्लाई करती है जहाज की एयरलाइंस को उनके 800 जो एम्प्लॉयज
छुट्टी पे
वो
स्ट्राइक पे
चले गए तो अब क्या होगा कि जो लोग सिग्नेचर क्लास बिजनेस क्लास प्रीमियम क्लास एंड प्रीमियम इकोनॉमी क्लास जो है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उनको तो हॉट मील्स मिल जाएंगे नॉट पहले तो ये था ना कि आपको मेन्यू दिया जाता था आप उसमें से चुने उन्हें मेन्यू नहीं है अब हॉट मील दे दिया जाएगा एटलीस्ट मगर जो इकोनॉमी में बैठे हैं अगर दो घंटे से ज्यादा की भी आपकी फ्लाइट है चार पांच छह घंटे
हमेशा सोटी जो पड़ती है वो इकोनॉमी क्लास को ही पड़ती तो है बड़ी क्लास को कभी भी
स्नैक्स उनको स्नैक्स दिया जाएगा जी
हमेशा जब भी टैक्स पे करने में इकोनॉमी क्लास टैक्स पे करती है अपर क्लास डजंट पे टैक्स दे हैव द बेस्ट लॉयर्स मैंने अभी तो यही बात की आपसे कि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर है उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन अकाउंटेंट है एंड दैट्स हाउ दे से अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैसा सेव किया और उसने नहीं अपनी दिखाई थी टैक्स रिपोर्ट ही डिड फाइल मगर उसने उनके लॉयर्स ने और उनके अकाउंटेंट्स ने मैक्सिमम लूप होल्स को इस्तेमाल करते हुए दे सेव्ड एवरी पेनी फॉर हिम और इवन इन कैनेडा But their job is, and this is these are the loopholes present in the system.
Yeah.
By the way, मैंने खुद भी travel किया था और अब अक्सर flights में आपको खरीदना पड़ता है मैं और मेरी बहन ने travel किया यहाँ से England. और मजबे पर हमने बड़ा इंजॉय किया हमने पैसे दे दे के दोनों बहनों ने पहली दफा ही हमने इस तरह ट्रैवल एक ही दफा हमने सिर्फ ट्रैवल किया तो हमने जनाब जहाज में एक चीज लेके खाई फिर हमने जहाज में दूसरी चीज लेके खाई फिर हमने चिप्स लेके खाए पैसों से हर चीज हमें पैसों से खरीदनी पड़ी तो हमने कहा चलो जी ठीक है इंजॉय करते हैं एनीवेज एक गीत की हमें फरमाइश मिली है और इस गीत की फरमाइश के साथ इंस्ट्रक्शंस भी हमें मिली हैं और इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि डू नॉट वॉच वीडियो जस्ट लिसन टू द सॉन्ग सो आई कैन प्ले दैट वीडियो मगर अगर कभी आप देख रहे हो तो आंखें बंद करके इस गाने को सुनिएगा मगर वीडियो मत देखिएगा प्लीज
आमिर से कहते हैं आमिर वीडियो मत चलो आमिर
नो वीडियो नहीं चलानी है ना
हाँ वीडियो मत चलाना आमिर
क्या हुआ जो तूने छू लिया न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई कंवर कंवर गई निखर निखर गई कंवर कंवर गई बना के आईना तुझे जान मन न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया ठंडी हवा में